सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 5। ओ नमः सिद्धे क्षोण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेष्यते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और उसके अभी हम पृष्ठ संख्या 11 पर आ गए। 11 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था और वहां कौन सा जीव गृहस्थ धर्म को पालन करने में समर्थ है, यानी योग्यता की बात यहाँ हो रही है। धर्म प्रकट करने के पहले समय दर्शन प्राप्त करने वाले के योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी बात चली थी।
पात्रता और योग्यता में क्या फर्क
है? कुछ नहीं, वही है। योग्यता कहो, पात्रता कहो, और ये पात्रता सदाचार रूप से ली है, यानी इतने तो आवश्यक बातें है। जो लौकिक में सदाचार्य भी नहीं है, जिसको नीति का कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसे तो वो तो भले वो सुनने जावे तो भी वो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, उसको तो प्रकट होगा ही नहीं। तो यह हमने देखा था न्यायोपात धनो, यानी न्यायपूर्वक धन कमाने वाला। उसके बाद 11 पेज पर जरा देख लेते हैं, संस्कृत में देखना ऊपर। न्यायोपात ने न्याय से उपात ने उपार्जन किया हुआ धन जिसके है ऐसा जीव, यानी जिसने अपना धन न्याय से उपार्जन किया होना चाहिए, उसके लिए क्या कहते हैं, क्या क्या छोड़कर? तो कहते हैं स्वामी द्रोह। स्वामी यानी मालिक, यानी मालिक से द्रोह करना, यानी उसके कुछ मायाचारी करके उसको कपट करके फंसा कर धन कमाना, ये अन्याय वाला हो जाएगा। यानी क्या क्या छोड़कर धन कमाना है? तो स्वामी द्रोह, मित्र द्रोह, मित्रों को फंसा कर कमाना, उसको मित्र द्रोह कहेंगे। विश्वसित वंचन, यानी किसी ने अपने पर विश्वास रख के कोई चीज दी है और उसको हमने मायाचारी की, उसके साथ उसको फंसाया। चौर्यादि, यानी चौर्य आदि से उपार्जन किया हुआ, या गर्ह्या, इन्हें झूठ बोलकर, ये सब ऐसा कमा उसके उपार्जन परिहारेण, यानी इनका परिहार करके, यानी इन बातों को छोड़कर अर्थ उपार्जन उपाय भूत, यानी इनके छोड़कर अन्य उपायों से उसने धन कमाया होना चाहिए। स्व स्व वर्णारूप सदाचारो न्याय, न्याय किसको कहना उसकी बात है, इतने सारे को छोड़कर जो धन कमाया है, और स्व स्व वर्ण, जैसे चार वर्ण है ना, यानी जो यानी व्यवसाय की अपेक्षा जो ब्राह्मण वेश वगैरह की, तो अपने अपने वर्ण के अनुसार, यानी अपने अपने जो पद्धति जो है उसके अनुसार जो सदाचार है उसको न्याय कहने में आता है। तेन उपात्तम, उसके द्वारा उपातेन उपार्जितम, उपार्जितम यानी आत्मसात कृतम, यानी कमाया हुआ धन, उसी को कहा यहाँ विभव। ये न जिसके ऐसा धन यानी वैभव है उसकी यहाँ बात कही, तो इसको लिखा है न्याय पूर्वक धन कमाने वाला, इतनी सारी बातें उसमें आती है। कहते न्यायोपार्जितम ही वित्तम, यानी न्याय से उपार्जित ने कमाया हुआ धन ही लोकहिताय स्यात्, यानी लोकहित के लिए उपयोगी होता है। और अशंकनीयतया स्वयं तत्फलोपभोगान मित्र स्वजनादौ संविभाग करनाच, यानी उसका फल अपने भी भोगता है और उसका विभाग करके अपने मित्रों को, स्वजनों को, इत्यादियों को भी देता है। अभी उसके लिए उन्होंने अलग अलग संस्कृत के उदाहरण दिए, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट उसकी टीका और विशेषार्थ पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने सभी का उदाहरणों का भी तात्पर्य लिया हुआ है। इसमें भी बहुत पढ़ने लायक है, परंतु हम इसको देखो, ये तो उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है संस्कृत, और बीच में उन्होंने उदाहरण दिए, रेफरेंसेस दिए अन्य अन्य ग्रंथों के, और फिर उसकी टीका भी लिखी है, स्वयं उन्होंने टीका लिखी है। अब उसका जो टीका का अर्थ भी और जिसको कहेंगे तात्पर्य पूरा लेकर यहाँ हिंदी में बताएंगे। अब विशेषार्थ देखते हैं, हाँ वर्ड टू वर्ड नहीं है ऐसा, परंतु उसका पूरा मीनिंग इसमें आ गया। प्रथम श्लोक की टीका में ही ग्रंथकार ने कहा है कि, देखो ये ग्रंथकार ऐसे स्वयं ग्रंथ लिखा है, उसकी टीका भी स्वयं नहीं लिखी है। अच्छा नहीं, केवल हमने पढ़ा था न्यायोपाध्यन की बात की, गुणों गुरुजनों और गुणों से महान, ये 10 पेज पर आ रहा है, न्यायपूर्वक धन कमाने वाले की बात हमने देखी। अब कहते गुणों को पूजने वाला, गुरुजनों को पूजने वाला और महान गुरुओं को पूजने वाला, ये सब आगे उसकी आने वाली है। 13 पेज पर ये बात आएगी, माता पिता आचार्य आदि को गुरु कहते हैं, इसलिए मैं विशेषार्थ पढ़ने जा रही हूँ, फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। अभी आपने शुरू किया तो गुणों गुरुजनों और गुणों से महान गुरुओं को पूजने वाला, पूजने वाला को आदर सत्कार करने वाला, जैसे हमने माता है पिता है बड़े लोग हैं उसको गुरु भी कहते हैं, बड़ों को गुरु कहते हैं। गुरु ये जरूरी नहीं कि आपको कुछ सिखाने वाला ही गुरु होता है। परनिंदा यानी दूसरे की निंदा करना, दोष दिखाना, कठोरता आदि से रहित प्रशस्त वाणी बोलने वाला, यानी अपनी वाणी से किसी को दुख हो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। वही बात हम सीधे शब्दों में भी कह सकते हैं, तो ये कठोरता से रहित वाणी बोलने वाला, परस्पर में एक दूसरे को हानि न पहुंचाते हुए, ये ऊपर के जो है ना संस्कृत में जो जो बातें आई है, न्यायोपात धन हमने देखा, यजन गुण गुरुन वो भी देखा, सदगी स्त्रीवर्ग भजन, त्रिवर्ग ने धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहते, स्त्रीवर्ग नहीं वो त्रिवर्ग, हाँ वो स्त्री वो तो उसका विसर्ग से स हो गया, यानी किसी को हानि न पहुंचाते हुए धर्म अर्थ और काम का सेवन करने वाला, ये तो गृहस्थ की बात होती है ना, तो ये गृहस्थ धर्म के अनुसार उसके सदाचार में क्या क्या आता है उसकी बात यहाँ चल रही। अब उसके लिए कहते हैं अन्योन्य अनुगुणम तदहरह गुरुहिणी स्थान आलय रीमयन, उसके कहते हैं उसके योग्य ऐसे जो पत्नी गांव नगर और मकान वाला, लज्जाशील रीमयन युक्त आहार विहार आर्य समिति, यानी शास्त्रानुसार खान पान और गमनागमन करने वाला, आर्य
समिति
नहीं नहीं संगति उसमें नहीं लेना, गमनागमन यानी आना जाना, यानी वो तो हिंसा रही थी, इसे इस तरह से हम देखते हैं। खान पान तो समझते हैं ना, आर्य समिति यानी सदाचारी पुरुषों की संगति करने वाले, प्राज्ञ विचारशील, मैं संस्कृत में से एक एक शब्द लेके उसका अर्थ यहाँ 11 पेज पर बता रही हूँ और श्लोक है 10 पेज पर। कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द समझते हैं क्या रुमा, कृतज्ञ दो शब्द आते हैं, एक होता है कृतघ्न और एक होता है कृतज्ञ, नहीं मालूम आपको मालूम है मराठी वालों को तो बुझाते हैं, हाँ उपकार को नहीं उसको स्मरण करने वाला, कृतज्ञ यानी किसी ने अपने पर उपकार किया है, कोई भी मदद की है या अपने माता पिता भी है, तो उनके उपकार का स्मरण करने वाला वो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ यानी उपकार को भूल जाता है, उल्टा उस पर आदर। हाँ, कृतज्ञ का अर्थ है किसी ने अपने को उपकार किया फिर भी उसको जिसको धोखा देगा वो कृतज्ञ हो जाएगा, ये कृतज्ञ की बात है। देखो, पर के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला, वशी यानी इंद्रियों को जो जिसने वश रखे, जिसको यहाँ जितेंद्रिय कहे। श्रृणवन धर्म विधिम यानी धर्म की विधि को प्रतिदिन सुनने वाला, यानी स्वाध्याय करने वाला हम कहेंगे। दयालु, दयालु का तो अर्थ दयालु है। और अघ भी यानी उसका डर है, जिसको अघ यानी पाप, यानी पाप से डरने वाला, पाप भीरु जिसको कहेंगे। सागार धर्मम चरित, ऐसा जो पुरुष है, पुरुष यानी ऐसा जो कोई जीव है, ऐसा जो कोई, पुरुष कहने से स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है केवल पुरुष, ऐसा नहीं अर्थ लेना, मनुष्य के लिए लिया। गृहस्थ धर्म को पालन करने में समर्थ होता है। अभी इसी एक एक बात को उन्होंने जो अन्य अन्य उसके लिए उद्धरण भी दिए हैं, स्वयं संस्कृत टीका भी लिखी है, उसका विशेषांत यहाँ लिखा है। देखो आगे उसके लिए बहुत सारे श्लोक उन्होंने इसी के पुष्टि के अर्थ में बहुत सारे दिए, ये 7-8 पेज तो उसके पुष्टि के अर्थ में ही, क्योंकि 12 नंबर का श्लोक डायरेक्ट 21 पेज पर है, उसके पहले पूरी ही इसकी टीका चल रही है। देखो जैसे हमने अभी दयालु शब्द देखा, 20 पेज पर निकालो, संस्कृत में मैं बताना चाहती हूँ आपको, नीचे से वो 18 जहां लिखा है ना वहां दयालु लिखा है। दुखित दुख प्रहानेच्छा लक्षणाम दयाम शीलयन धर्मस्य मूलम दया इति श्रुते है ताम ही अवश्यम कुर्वीत, यानी धर्म का मूल दया है और उसको अवश्य करना चाहिए ऐसा, तो उसके लिए फिर अन्य अन्य श्लोक बताए, फिर रत्नाकर शौकाचार्य के भी और अन्य भी ग्रंथों के दिए है। अभी हम
धर्म का मूल है कि धर्म का मूल दया,
एक ही बात है ना, धर्म का मूल दया कहो या दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म नहीं, दया
धर्म का
मूल है। आप दया को पहले लिखो बाद में लिखो,
धर्म का मूल दया है,
एक ही बात है, उसको पहले और बाद में लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? नहीं नहीं वैसा नहीं होता है, ये तो वाक्य रचना है, उसको पहले रखो बाद में रखो,
कौन किसका मूल है।
नहीं नहीं नहीं, दया को क्या ना धर्म का मूल, दया जो है वो धर्म का मूल है, यानी दया के बिना धर्म प्रकट नहीं होगा, दया का मूल धर्म नहीं कहा, ये दो अलग वाक्य, दया का मूल धर्म है कहना अलग है और धर्म का मूल दया कहना अलग है। तो आप धर्म का मूल दया है कहो या दया धर्म का मूल है, दोनों एक ही वाक्य हुए, दया को हमने पहले या बाद में रखने से कुछ फर्क नहीं हुआ उसमें, उनमें ऐसा लगता है कि दया
धर्म का मूल समझे, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों ऐसा।
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहेंगे कि दया
मैंने ऐसा श्लोक भी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
इसका अर्थ ये है कि तुम दया करो यानी यहाँ शुभ भाव करो तो धर्म होता है, ये कहना उपचार है। तो दया स्टार्ट लेकिन से को
स्वदया
करके अपना अनुभव करो तो धर्म का मूल होता है, निश्चय से वो बात चलेगी। और उपचार से या व्यवहार से कहेंगे कि दूसरे पर दया करे तो ये धर्मी जीव ही करेगा, उसके साथ ही साचा व्यवहार सच्चा निश्चय से दया का है या अपने पर दया का, यानी जहाँ हिंसा अपनी छोड़ देना यानी अपना अनुभव करना, ऐसा है ऐसा ही धर्म।
अभी विशेष याद पढ़ी उसमें सभी बातें आने वाली है। फिर से हम देखे देखो 11 नंबर पेज पर विशेषार्थ प्रथम श्लोक की टीका में ही ग्रंथकार ने कहा है कि जो मुनिव्रत धारण करने की इच्छा रखते हुए भी अपनी कमजोरी और परिस्थिति के कारण उसे धारण करने में असमर्थ है वे साकार धर्म का पालन करते हैं। आपने आदि में किस किस को लेना ये सब पूछा था अश्विन भाई, याद है क्या कि भूल गए? वहाँ सहनन आदि की बात की थी तो आपने पूछा था आदि में किसने, तो ये तो स्वयं की कमजोरी के कारण परिस्थिति जैसे है कि घर में किसी की जिम्मेदारी है, एक बूढ़ी माँ है और उसके लिए कोई नहीं है और ये छोड़ के चला जाएगा, तो वो तो इन्हें उसके छोड़ने का भी मन नहीं है, छोड़ नहीं सकता है, तो ये वैसे भी उसकी कमजोरी है ना। तो आदि में अन्य भी परिस्थितियां लेना जिसको हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव समान जो कुछ अन्य होती है उसकी, तो उसे धारण करने में असमर्थ है क्या मुनिव्रत धारण करने में, वे सागर धर्म का पालन करते हैं। और जिन्हें मुनि धर्म की इच्छा ही नहीं है उनका सागर धर्म भी पूर्ण नहीं है। बहुत हाँ बहुत जो कहते हैं ना माइके मार्के की बात की उन्होंने, हम तो मुनि धर्म नहीं पालना चाहते, बस हम तो बस गृहस्थ है, बस हम संतुष्ट है, तो कहते हैं नहीं उसको मोक्ष मार्ग पर आगे आरूढ़ नहीं होना है, तो उसका भी सागर धर्म भी सच्चा नहीं है, क्योंकि कहते हैं हमने मुनि वो तो कष्टदायक है, हम तो भी ये ठीक है अपने लिए। इससे स्पष्ट है कि सागर धर्म का पालन करना भी कितना कठिन है, उसके पालन के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन्हें यहाँ बतलाते हैं। सबसे प्रथम न्यायपूर्वक धन कमाना आवश्यक है, यदि नौकरी करते तो मालिक को धोखा देकर धन कमाना अन्याय है, यदि किसी मित्र के साथ कारोबार करते हैं तो मित्र के साथ धोखा करना अन्याय है, तो मित्र कहो पार्टनर कहो अभी जो कुछ है। इसी तरह जो अपना विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात करना अन्याय है, चोरी से धन कमाना तो अन्याय है ही, इन सब अन्यायों से बचकर जो सदाचार है वही न्याय है। इस न्याय से जो धन कमाता है, अभी चोरी में सबको समझ लेना, हम तो चोरी को किसी को जाके उठा रहा ना किसी के घर में से वो चोरी है, अरे पर टैक्स की चोरी भी चोरी है कि नहीं है, वो सब इसमें आ जाएगा, जो राज विरुद्ध जो है समाज विरुद्ध जो कोई चीजें करता है सब उसमें आ जाते हैं। हाँ हाँ कौन सी जिम्मेदारी, संसार में भटकने की कैसी थी, इसे वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है ना, नहीं तो उसको सोचना ऐसा है कि मैं नहीं करूंगा तो ये संसार में कौन रहेगा, सारे मोक्ष चले जाएंगे तो
आपका ऐसा कहना है कि अगर हम ऐसा टैक्स में चोरी नहीं करेंगे तो घर बार चलाने में हमें तकलीफ होगी, ऐसा हाउ कमिटेड टू एंड
हमको घर बार चलाने में असमर्थ है तो हम चला सकते हैं,
वो ऐसा पूछ रहे हैं, यानी ये पहला ऐसा मानते हैं कि मैं घर को
चलाता हूँ, श्रावक की बात चल रही है, यानी श्रावक यानी थोड़ा पैसा कमाएगा तो घर नहीं चलता, ज्यादा चलाएगा तो ज्यादा कमाएगा तो घर चलता है, ऐसा है ना, ये चलता है कि ज्यादा बिगड़ता है पता नहीं क्या क्या होता है। देखो देखो ये हम अभी कभी मैंने संस्कृत में भी मैंने कुछ ये निकालो, इन्होंने सब लिखा है कि नहीं, हाँ यह लिखा है पेज नंबर 12 मुझे संस्कृत में मिला था, पहली लाइन अन्यायोपार्जितम वित्तम दश वर्षाणि तिष्ठति, क्या कहते हैं दस अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष टिकता है, प्राप्ते तो एकादश वर्षे समूलम च विनश्यति, और 11 वर्ष प्राप्त होते मूल सहित नष्ट हो जाता है। नीचे लिखा है क्या? कहाँ देखो, चौथे लाइन में, चौथे लाइन में कहाँ है? चौथी लाइन में हिंदी में लिखा है उन्होंने, अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक ठहरता है, 11वां वर्ष लगते मूल के साथ नष्ट हो जाता है। जैसे मछली को फांसने के कांटे में लगा मांस अपने साथ मछली को भी ले मरता है, उसी तरह धन के राग से अंधा हुआ मनुष्य अपने पाप से ही उस फल को भोग पाता है। यानी पाप करके वो कम आता है, तो उसके तो पाप के साथ हो तो ये तो बात आने वाली, हम क्रम से चले जाएंगे। हा? हा? अच्छी पुस्तक है, बहुत बहुत अच्छी। बिल्कुल, ये श्रावक है हम तो, हम कहाँ कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ कहाँ ठहरे, अपनी अपनी देखना है, कौन क्या करता है उसकी बात नहीं है। देखो इस 11 पेज न्याय क्या है हमने देखा था, इस न्याय से है ना, हमने पढ़ा था नीचे से चौथी लाइन, इस न्याय से जो धर्म कमाता है वही श्रावक धर्म के पालन का यथार्थ में अधिकारी। ये तो एक कंडीशन बताया, अभी और भी आने वाली, क्योंकि न्याय से अर्जित, अर्जित यानी कमाया हुआ धन इस लोक में हितकर होता है, उसके देन लेन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। अन्याय से कमाता तो अरे कोई जान जाएगा, मैंने तो ये माफ किए, मैंने तो ऐसा पाप किया, ऐसे किसी को फंसाया है तो डर रहता है उसका। आनंद पूर्वक उसका उपभोग किया जा सकता है, यानी उसकी तो बिल्कुल वो निर्धास है, निशंक है, और अपने बंधु बांधवों तथा इष्ट मिश्रों को दिया जा सकता है, तथा परलोक के लिए 12 नंबर पेज पर सत्पात्रों को तथा दीन दुखियों को दान किया जाता है। ये तो ये सारी बातें हमने यहाँ 11 नंबर अभी मैंने संस्कृत में पढ़कर बताई थी, अभी टीका में उसी का ये हिंदी अनुवाद। अन्याय का धन तो दोनों ही लोकों में अहितकारी होता है। दोनों कौन से लोग? यह लोक और परलोक। इस लोक और परलोक, इस लोक में लोक विरुद्ध कार्य करने से सरकार से दंड मिलता है। ये बात है, कुटुंब चलाना चाहते हैं ना। और परलोक में दुर्गति मिलती है। इसके सिवाय अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक समय तक नहीं ठहरता, बल्कि पूर्व संचित द्रव्य को भी साथ में ले जाता है।
कैपिटल लॉस।
अभी देखते हैं ना हम क्या क्या चल रहे, तो कोई डर से फिर आत्महत्या तक कर देता है कि ये अपने इतना पाप किया है अभी क्या होगा। तो पहले तो पाप किया तो नरक का तो बंद किया ही किया है, और आत्महत्या करके तो वही वो वक्ता उसने सिर लगाया उसके ऊपर। कहा है अभी हमने जो पढ़ा था, अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक ठहरता है, 11वां वर्ष लगते ही मूल के साथ नष्ट हो जाता है। जैसे मछली को फांसने के कांटे में लगा मांस अपने साथ मछली को भी ले मरता है, उसी तरह धन के राग से अंधा हुआ मनुष्य। नहीं नहीं नहीं, बोलने
10 साल लिखे मोदी जी को 25-25 साल से ऐसे बैठे हैं, अभी भी कुछ नहीं तो बढ़ते ही जा रहा है।
हाँ, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो और ज्यादा पाप इकट्ठा कर रहे हैं ना। वो अंदर ही अंदर कितना जलता है, और उसके जो देखो ये जीव दुखी तो कषाय से है, हमें लगता है कि उसके पास धन है इसलिए वो सुखी है, परंतु उसकी जो आकुलता है वो धन के पीछे और धन की चाह है, वो इटसेल्फ पाप तो है ही, आकुलता तो कितनी पड़ी है, और उसके जो कुछ संबंधी है, रिलेटिव्स है, वो धन के लिए अभी बेटा भी बाप को मारता है, बाप बेटे को मारते, कितनी कहानियां सुनते हम देखते हैं रोज की, पढ़ते हैं अखबारों में, न्यूज सुनते हैं, ये सारा ही धन के पीछे क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल। हाँ, यानी वो जिसके पास धन ज्यादा है उसका भय भी ज्यादा है। कोई किसी को अपहरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, वो तभी धन कहाँ रखना, वो सिक्योरिटी। अभी इतना धन है तो जो देखता है, जिसको पता है कि इसके पास धन है, तो उसके पीछे दूसरे भी लग जाते हैं, उसी को उठा के ले जाते हैं। हमें बाहर से वो धन की महिमा भी आती है और दूसरे का धन देख देख कर हम भी वो, और शॉर्ट टाइम में कमाना है, हरेक को बहुत कम समय में धन कमाना है, और उसके लिए चाहे वो अन्याय पाप करने को तैयार है। पर क्योंकि मान्यता क्या है कि इससे मैं सुखी होऊंगा, ये बात है, मूल में ही भूल चल रही है उसकी। न्यायी मनुष्य का पशु पक्षी भी विश्वास करते हैं, अन्यायी से तो सहोदर भाई भी दूर हो जाता है। ये सहोदर शब्द कैसे आया? सहोदर है ना, सगा भाई, उसी माँ के पेट वाला, पेट से जन्मा हुआ। सहोदर भाई भी दूर हो जाता है, कहाँ है? न्यायी की सहायता पशु पक्षी भी करते हैं, और कुमार्ग गामी यानी खोटे मार्ग पर चलने वाले सहोदर भाई भी छोड़ देता है। इसके लिए उन्होंने ऊपर जो श्लोक शब्द दिए है, देखो, यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिर्यंचोपि सहायताम अपन्थानम तु गच्छन्तम सोदरोपि विमुञ्चति, यानी सगा भाई भी छोड़कर चला जाता है। हाँ, रावण को छोड़कर विभीषण चला गया। यद्यपि किसी किसी अन्यायी के पापानुबंधी पुण्यकर्मों के उदय से इस लोक में विपत्ति नहीं देखी जाती, ये आपका 25% क्योंकि उनको पता है कि क्या लोग पूछते हैं क्या है, क्योंकि हम तो देखते हैं, लोग तो ऐसे कहते हैं ना, झूठ किए बिना, चोरी किए बिना आजकल कहाँ कैसे चलता है, पैसे कैसे मिलता है, ऐसे कहेंगे। तो ये क्या है सारा? तो कहते पापानुबंधी पुण्य का उदय, पापानुबंधी पुण्य का उदय नहीं, ये ऐसा पुण्य का उदय है, वो पाप कर रहा है उसका उदय पुण्य का उदय हो रहा है, यानी पुण्य तो पहले बांधा था, परंतु ऐसा पुण्य है वो खोटा पुण्य है कि उसका उदय तो चलेगा, पर वर्तमान में पाप करेगा तो उसका वो उदय चल रहा है, यानी पुण्य के उदय में वर्तमान में पाप पाप और पाप ही कर रहा है। तो यद्यपि किसी किसी अन्यायी के, हम देखते हैं कोई स्मगलर है, कोई अन्य खोटा काम कर रहा है, और वो तो वैभव युक्त है, धन वैभव से युक्त है, वो सुखी है कि नहीं वो नहीं बता रहे। तो कहते पापानुबंधी पुण्य कर्म के उदय से इस लोक में विपत्ति नहीं देखी जाती, यानी उसके ऊपर कोई संकट आया हुआ नहीं दिखता है, तथापि परलोक में विपत्ति अवश्य आती है। एक नियम है, जो जो कर्म बंधेगा, जो जैसा परिणाम है वैसा कर्म बंधेगा ही, और जो जो बंधा है उसका फल मिलेगा जरूर। अभी तो उसको मजा लग रहा है, परंतु परलोक में जाके भोगेगा वो, हाँ वो सब, वो फिर रोना आएगा। यहाँ भी ऐसे मिलते हैं हमको, कह रहे ऐसा तो कोई कितना अच्छा है सदाचार्य, इतने संकट क्यों, इतने संकट क्यों? वो तो अभी के थोड़े ही परिणामों से संकट रहा है, अभी तो सदाचारी है, पर पहला का कोई पाप किया है उसका तो फल भोगेगा वो जी। कहा है, अपनी दृष्टि विलास लीला पटल से आच्छादित होने के कारण, अपनी दृष्टि विलास लीला पटल से आच्छादित होने के कारण जो सामने स्थित पूरा पड़ते फिरा परलोक के मार्ग को नहीं देख पाते, उन मुग्ध बुद्धियों का घोर अंधकूप रूपी नरक में पतन समीप ही है। ये दृष्टि किससे आच्छादित हो गई है? विलास लीला यानी भोग विलास, उसको विलास कहा है, उससे वो दृष्टि अंध हो गई, पटल आ गया, जैसे उसके ऊपर ऐसे पर्दे आए हैं कि सामने स्थित परलोक के मार्ग को नहीं देख पाते, अच्छा मार्ग तो नहीं देख पाते, परंतु मुग्ध बुद्धि यानी ऐसी जो उनकी बुद्धिहीन हो गई है कि घोर अंधकूप रूपी कूप यानी कुआ, अंधकूप यानी बहुत गहरा कूप है जिसमें अंधकार है, ऐसे नरक में पतन समीप ही है, यानी अपने भोग विलास के कारण वो अवश्य नरक में जाके पड़ गए। हमने तो यहां तक देखा है चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती तो उसी को पद मिलता है जो पहले कोई सम्यक तो सहित कुछ पुण्य किया है, समय दृष्टि हुआ परंतु वो गिर गए मिथ्या तो भी चला, और चक्रवर्ती पद भोगते भोगने में ही मशगूल है, तो मरकर कहां जाएगा? सातवें नरक में जाएगा।
आपने जो बात बताई कि यहाँ विलास कर रहा है जी और उसके लीला में आगे जाके वो बहुत उसका छोटा फल भोगेगा। अभी इसी काल में हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जिसको शादी होते हुए कोई घर से जिसको कहते सुख जोचको हम कहेंगे लोग कतई नहीं मिल रहा था, शादी होकर बिजनेस साल हो गए फिर भी उनका पति दूसरे किसी औरत के साथ घूमता है, और उस स्त्री को दो मतलब अपत्य हुए एक साथ जिसको क्वीन कहते हैं तो वो खुद स्वयं नौकरी करें और वो बच्चों को हाथ में लेके एक एक दो दो, दो माइल जाके वो पालना जो होते हैं ना क्या बोलते हैं यहाँ बच्चों को संभालते
हैं
उसमें दोनों बच्चों को उठा के ले जा, कोई ऐसा नहीं कहे कि चल मैं एक बच्चे को ले जाता हूँ, तो वो मन में ऐसा सोचती थी स्त्री कि सीता को भी अरण्य में छोड़ दिया गया उसको दो बच्चे हुए तो उसको कितनी तकलीफ हो गई, मेरे तो यहाँ घर है मेरी नौकरी है ऐसा मुझे मिलता है, यानी देखो उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा मर्द छोटा काम करते तो मैं भी करूं, आज के तारीख की बात है वो सुनी हुई नहीं बिल्कुल अपने सामने है, यानी हम तो क्या सीता है इसके बाद बैठा है 25 साल में इसके बाद तो फिर अरे वो आगे घरों में भोगेगा तो किसने देखा है, इस गांव में तो मजा करने दो और छोटा काम सोच रहे, यानी ये सागर धर्मामृत में तो यही बात है कि हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए ये हमें अपना सुधार करने के लिए पढ़ना है, लोगों की तरफ देख देख के वो बोला ना विलास लीलया सटल इतना उत्कृष्ट शब्द लगाया है तो पटल आ गया है सामने पर्दा आ गया है पटल से, तो इसलिए उसको अंधकार कूप में गिरता है तो उसको पता नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बहुत ही मार्केट की बात बताई मैंने आज आगे मैं
परमार्थ से धन कमाने का उपाय न्याय ही है, कहा है जैसे मेंढक जलाशय में और मछलियां भरे तालाब में आकर बसती है वैसे ही समस्त संपदा विवश होकर शुभ कर्म का अनुसरण करती है। क्या कहा? यानी पुण्य से धन तो अपने आप स्वयं चलाएगा, ये बात बताना चाहते हैं। धन कमाने का उपाय न्याय ही है, न्याय यानी वो पुण्य परिणाम सदाचार, न्याय किसको कहा कर? ये दो ये बातें पाप को छोड़कर उसको न्याय कहा, यानी सदाचार जिसको, यानी दूसरी भाषा में जो धन मिल रहा है वो पुण्य के फल में मिल रहा है कि पाप के फल में मिल रहा है? पुण्य के उदय से मिल रहा है, ये तो ऑर्डिनरी बात यहाँ पर। तो जो न्याय से बिहेवियर चल रहा है आचरण कर रहा है वो पाप नहीं कर रहा है, खोटा कार्य नहीं कर रहा है, पाप कार्य तो नहीं कर रहा है वो, ये धन कमाने की इच्छा वो तो लौकिक यानी उसको उधर निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, गृहस्थ के लिए जो उचित न्याय पूर्वक धनोपार्जन कर रहा है तो उससे तो उसको पैसा मिलेगा ही जरूर। तो परमार्थ से यानी सच देखा जाए तो धन कमाने का उपाय न्याय ही है। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी नहीं मिल रहा है, परंतु आप इन लॉन्ग टर्म देखो। हमने भी कोई के जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं उसको भी जाके पूछो, शुरुआत तो उन्होंने बहुत थोड़े से की थी मगर वही टिक पाते हैं जिन्होंने न्याय से वो बात चाली। न्याय से उपार्जित धन ही पुरुषार्थ की सिद्धि में सहायक होता है। केवल तो पुरुषार्थ नहीं, अभी आगे चलकर धर्म मार्ग में लगना है तो उसके लिए भी यही उचित है। वैभव गृहस्थाश्रम में प्रधान कारण है, इसलिए सर्वप्रथम उसी का निर्देश किया है। अब दूसरी बात, प्रधान कारण है ये वो तो गृहस्थ जीवन का एक साधन है, प्रमुख अंग है। धन धन जो है गृहस्थ जीवन के लिए एक आवश्यक सामग्री है। ये हम वो द्रव्य नियोग वाला वो बात नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लौकिक जीवन की ये तो ऑर्डिनरी व्यवहार में से बात हो रही है सर। ये कोई धन कमा ही नहीं सकता उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है।
गृहस्थी चलाने के लिए
आवश्यक है,
इसलिए पहले पहले न्याय
उसकी बात
कमाना चाहिए, ये बात चाहिए।
यानी जो गृहस्थ है वो अन्याय का त्यागी होना चाहिए, ये बात पहले हम हमेशा कहते हैं ना, अन्याय अनीति अभक्ष भक्ष का भक्षण का त्यागी होना ही चाहिए। अब दूसरी बात है, वहां जो आई थी गुणों गुणजनों और गुणों से क्या करता है, गुरुओं को पूजने वाला है, आदर सत्कार करने वाला, उसकी बात है। सेकंड नंबर बताया, अपना और पराया उपकार करने वाले, सौजन्य उदारता दानशीलता स्थिरता प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना आदि आत्मधर्मों को गुण कहते हैं। ये ज्ञान दर्शन चारित्र वो गुणों की बात नहीं है जिसको हम बोलोगे ये तो गुण ही है, वो उसकी अपेक्षा से यहाँ गुण कहा। तथा लोकापवाद, लोकापवाद समझते हैं? लोकापवाद से डरना, यानी लोक में जिसको बुरा कहते हैं उसको लोकापवाद कहते हैं, निंदा। जैसे सीता का त्याग क्यों किया राम ने, तो लोकापवाद के कारण लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था। हाँ, लोक में जिसको बुरा कहने में आता है निंदनीय, लोक में निंदनीय चीजें उसको कहेंगे लोकापवाद से डरना। दीनों के उद्धार में आदर भाव, कृतज्ञता उदारता आदि को सदाचार कहते हैं। गुण किसको कहा, तो सौजन्य उदारता दानशीलता स्थिरता वगैरह प्रेम पूर्वक बोलना आदि को गुण कहा। लोकापवाद से डरना, दीनों के उद्धार में आदर भाव कृतज्ञता उदारता वगैरह को सदाचार कहते हैं। उदारता वहां पर भी गुणों में भी लिया, यहाँ पर भी लिया। इनका बहुमान करना, गाथा में क्या होता है, गुणों का बहुमान करना, आदर करना, प्रशंसा करना, इन गुण वालों की सहायता करने आदि के रूप में अनुकूल प्रवृत्ति को पूजा कहते हैं। पूजा यानी फूल और वो अक्षत लेके पूजा करना, उसको पूजा नहीं कहा यहाँ पर। क्या कहते हैं, गुण वालों की सहायता करने आदि रूप में अनुकूल प्रवृत्ति रखना, उसको यहाँ पूजा करो। हाँ हाँ, दीन यानी गरीब, दीनों का उद्धार। हाँ, पूछना है ऐसे, क्योंकि क्या है भाषा का ये बात है ना, हम कहते हैं दीन दुखी, ये दीन, दीन के लिए दुखी शब्द भी आता है, तो उनका उद्धार करना है, उनको हेल्प करना। वो दिन रात वाला दीन वो ह्रस्व दी है, और ये दीन है दीर्घ है, पहले और दीर्घ। इनका बहुमान करना, प्रशंसा करना, इन गुण वालों की सहायता करने आदि के रूप में अनुकूल प्रवृत्ति को पूजा कहते हैं। शिष्टाचार की प्रशंसा ही उसकी पूजा है। गुण वालों की पूजा यानी उनकी प्रशंसा, उनके जो गुण है, जो उदारता है, वो जो दया धर्म कह रहे हैं, क्या दीन दुखियों के लिए जो कुछ कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करना ही उनकी पूजा। शिष्टाचार ने अच्छा आचार, उचित आचार, यानी अच्छी बिहेवियर जो है उनकी। यानी किसी ने कोई कार्य किया तो हम उसके अनुमोदना भी करते ना, वो भी उसकी एक प्रशंसा ही हो गई। किसी ने दान दिया तो दूसरा कहेंगे सारो लाभ लिया। यानी वो क्या करना चाहते हैं, उसकी अनुमोदना करना, उसने अच्छा कार्य किया उसको प्रशंसा करना चाहते, बस इतनी बात। यथा घोर विपत्ति में स्थिरता, स्थिरता ने बहुत संकट आए तो भी डामाडोल नहीं, शांति, ये स्थिरता। ये ऊपर का जो श्लोक है ना उसका अर्थ देख, ये नौ नंबर जो लाइन है वहां का जो है विपद्युच्च स्थैर्यम, उसका यहाँ हम डायरेक्ट अभी उसका अर्थ देख रहे हैं, इसलिए उसको इन्वर्टेड में रखा हुआ है। घोर विपत्ति में स्थिरता, विपत्ति यानी संकट, महान पुरुषों के पदों का अनुसरण, पद अर्थ होता है उनके चरण, चरणों का अनुसरण, हुए जैसे आचरण करते हैं वैसे करना, उसको कहेंगे उनके पदों का अनुसरण। अनुसरण यानी टू फॉलो। न्याय पूर्वक आजीविका, आजीविका यानी जो हम लाइवलीहुड है ना कमाना, जो अभी हमने देखा न्यायपूर्वक धन कमाना उसी को आजीविका कहेंगे। प्राण जाने पर भी मलिनता का न आना, यानी अच्छी अपनी बातें नहीं छोड़ना, मलिनता का नहीं आना, यानी कोई हिंसादी पाप जो तीव्र पाप है उसको नहीं करना। दुर्जनों की अभ्यर्थना न करना, यानी उसकी सराहना नहीं करना, सराहना नहीं। अभ्यर्थना का अर्थ क्या है? हाँ, विनंती,
उनको उनकी प्रार्थना नहीं की जाती, उनकी
विनती, यानी याचना कहो ना, याचना। गरीब मित्र से भी याचना न करना, यह सज्जन पुरुषों का विषम असी धारा व्रत किसने कहा है? असी धारा समझते हैं? असी यानी तलवार, तलवार की धारा, उसको असी धारा व्रत कहते। कोई कठिन व्रत है तो उसको असी धारा व्रत कहने की पद्धति है। पैशून्य
का अर्थ क्या है?
पैशून्य जो पिशून्यता है वो तो अभद्र जैसे या कठोर जैसे, वो पैशून्य।
बारह पेज पर,
पैशून्य दैन्य दम्भस्तेयानुमृत पातकादि परिहारात्। पैशून्य ने पशु जैसे बिहेवियर, दैन्य ने दीनता, दम्भ दम्भ ने खोटा अभिमान, स्तेय स्तेय ने चोरी, अनुमृत ने झूठ, पातकादि इत्यादि पाप परिहारात, इनके परिहार से लोकद्वय धर्मार्थम, दोनों लोक में धर्म अर्थ वगैरह आगे का लिखा नहीं उन्होंने, या वहां गया होगा पुस्तक में से। तथा ये हमने गुण, गुणों का, गुणों की पूजा और गुण वालों की पूजा देखी। तथा माता पिता आचार्य आदि गुरु कहे जाते हैं, गृहस्थ को उनका भी पूजक होना चाहिए। उनमें से माता पिता की पूजा, पूजा ने आरती लेके वो आरती उतारना उसको पूजा नहीं कहा, सन्मान। तीनों संध्याओं में उन्हें प्रणाम करना, इस लोक और परलोक में हितकारी अनुष्ठानों में लगना, अनुष्ठान यानी रिचुअल्स, जो धार्मिक जो क्रियाएं होती है, जैसे देव पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये क्या है? अनुष्ठान। विधान करना, ये अनुष्ठान है सारे, रिचुअल्स जिसको कहते हैं।
माता पिता की पूजा तीनों संध्याओं के,
संध्या यानी सुबह दोपहर शाम, संध्या उसमें अर्थ होता है। अभी वो उस जमाने में तो पद्धति होती भी होगी, अभी भी सुबह उठते ही माँ घर के बड़ों की पोई चूरते हैं, अभी वो पद्धति नहीं रही ना, उल्टी हो। हम अमेरिका में जाते हैं, वहाँ एक फैमिली है, वो मायामी में, छोटे छोटे बच्चे भी 2 साल के, सुबह आएंगे अभी हम तो वहाँ मेहमान है, वहाँ घर के सबको तो जय जिनेन्द्र करके बिल्कुल झुककर उनकी तो वंदना करेंगे ही करेंगे, हमसे भी करेंगे। अभी रीना मोना के स्कूल में भी उनको पढ़ाया हो गया था, वहां जब स्कूल में निकलते थे तो हमें नमस्कार करके निकलते। अभी भी कहीं हम बाहर जाते हैं तो अपने बड़ों के तो पैर छूते हैं ना, वो तो पद्धति है। वहां तो स्कूल में तो कंपलसरी सिखाते थे, घर से स्कूल में निकले तो पैर छूकर निकलते। इस लोक और परलोक में हितकारी अनुष्ठानों में लगना, अनुष्ठान यानी जो कोई कार्य जो होते हैं, शुभ कार्य जो लौकिक, उनकी आज्ञा से ही सब काम करना, घर के लिए आवश्यक वर्ण गंध पुष्प फल आदि तथा नया अन्न आदि लाना, यह सब उनकी पूजा है, यानी उनके आज्ञा में रहना उनकी पूजा है। अभी आजकल सब उल्टा हो गया ना सभी, ये तो ऐसे कहने वाले कितने मिलते हैं कि किसी माँ ने 10-10, 11-11 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु परिस्थिति ऐसी आई है कि 10 मिलकर भी उनके एक माता को नहीं पालते। सबको लगता है अरे मेरे मैं क्यों पालू, वो दूसरा पालेगा, वो दूसरा पालेगा, टर्न टर्न बाय टर्न। आचार्य पूजा का कथन तो पूर्व में विनय के वर्णन में किया जा चुका है, ये जो पूर्व में यानी वो अनगार धर्मामृत में वो बात आई होगी शायद, आगे भी कहेंगे। मनु ने भी कहा, ये जो मनुस्मृति में भी, ये तो अन्यमति का है ना, मनुस्मृति, मनुस्मृति नाम का ग्रंथ है, मनु ने जिसकी रचना की, ऊपर लिखे ना, यन माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नुनाम न कस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतै ही अपि। देखो इसका अर्थ देखते हैं, मनु ने भी कहा है संतान को जन्म देने में माता पिता जो कष्ट सहते हैं उसका मूल्य सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। जन्म दिया है बड़े करने में, उनको शिक्षण देने में, उन्होंने जो कोई है तो कहते उसका हम मूल्य नहीं चुका सकते। उपाध्याय से 10 गुना आचार्य का, आचार्य से 100 गुना पिता का, और पिता से 1000 गुना माता का गौरव है। कहाँ सहस्रम तो पितुर माता गौरवेण अतिरिच्यते। देखो उपाध्यायात 10 आचार्य का, आचार्यभ्य शतम पिता का, पितु यानी पिता से, सहस्रम तो माता का, पितु ये षष्ठमी है, षष्ठी विभक्ति है, पितु यानी पिता का, यानी पिता से, ये जो उपाध्यायात है ना उससे, षष्ठी नहीं वो उससे, ऐसे पिता से भी माता का गौरव है ना अतिरिच्यते, यानी उसका गौरव अधिक अधिक है। आचार्य पिता माता बड़ा भाई इनकी अवमानना नहीं करना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति में जो अन्य मति में भी जो कुछ सदाचार बातें बताई है उसकी बातें उदाहरण रूप से दिखाई है, यहाँ बताई है। तथा जो ज्ञान संयम आदि से महान है उनकी सेवा, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, उनके सामने उठकर खड़े होना आदि से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान और संयम से संपन्न है उनकी पूजा करने पर नियम से वे कल्प वृक्ष के समान सदुपदेशु फल प्रदान करते हैं। ये पहले के जमाने में ये जो जितना विनय वो भी नहीं रहा, कहीं कहीं देखने में आता है। लौकिक नहीं, अभी यहाँ पर जो गुरुजन है उनकी भी देखते संयमी है ना, गुरु जो है साधु है। गृहस्थ की वाणी परनिंदा कठोरता आदि दोषों से रहित होना चाहिए। पर के अपवाद में बहुत दोष है, अपवाद है पर की निंदा में। कहा है दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा से नीच गोत्र कर्म का ऐसा बंध होता है जो करोड़ों भवों में भी नहीं छूटता। ऊपर लिखा है पर परिभव परिवादात आत्मोत्कर्षाच बध्यते कर्मम नीचैर गोत्रम प्रतिभवम अनेक भव कोटि दुर्मोचम। ये जो भी हमने देखा ना, दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा से नीच गोत्र का बंधन होता है जो करोड़ भवों में भी नहीं छोड़ता। तथा उसके त्याग में अनेक गुण है, किसका त्याग, दूसरे की निंदा त्यागना। कहा है यदि तू जगत को एक ही कार्य के द्वारा वश में करना चाहता है तो अपनी वाणी रूपी गौ को परनिंदा रूपी धान्य को चरने से बचा। वाणी को गौ गाय की उपमा दी और परनिंदा रूपी धान्य खाने से चरने से उसको बचा, इन्हें अपनी वाणी को कंट्रोल में रख करते हैं, वश में रखना। धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। जो 11वें नंबर के श्लोक में एक एक बात उन्होंने बताई है उसकी एक एक बात पर वो अलग अलग चर्चा करते हैं, जिससे सांसारिक अभ्युदय पूर्वक, अभ्युदय का अर्थ होता है ऊपर उठना, उन्नति जिसको हम कहते हैं, कल्याण, सांसारिक प्रोग्रेस, सांसारिक अभ्युदय ने वो प्रगति कुछ, सांसारिक अभ्युदय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे धर्म कहते हैं। क्योंकि जो पुण्य बनता है समय दृष्टि को वो नेचुरली उसके ये सांसारिक जो लौकिक जो है उसका फल तो उसके मिलेगा ही मिलेगा, जिससे समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं उसे अर्थ देते हैं। अर्थ यानी पैसा जो कह रहे हैं धन, तो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। और जिससे सब इंद्रियों की तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। धर्म अर्थ काम है ना। धर्म किसको कहा कि सांसारिक अभ्युदय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे धर्म कहते हैं। इसीलिए धर्म में तो ये संसार गृहस्थ के लिए धर्म अर्थ काम है, धर्म में तो वो भी आता है पुण्य रूप कार्य को भी धर्म लगता है। अर्थ यानी जिससे समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं और काम यानी सभी इंद्रियों की तृप्ति होती है, यानी जिसको इंद्रियों के भोग कहते हैं उस सबको मिलकर काम कहेंगे। गृहस्थ को इन तीनों का ही सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि एक से दूसरे में बाधा न आवे, अर्थात एक एक का सेवन न करके तीनों का ही अपने अपने समय पर सेवन करना चाहिए। जो धर्म और अर्थ की परवाह न करके बनैले हाथी की तरह विषय सुख में आसक्त रहता है, वह किन आपत्तियों का शिकार नहीं होता? प्रश्न चिन्ह चाहिए। ये हाथी की मालूम है ना, कपट के हाथी होते हैं। हाथी को पकड़ने का तरीका मालूम है? एक बड़ा गड्ढा होता है, उसमें वो तो सूखी लकड़ी घास वगैरह रखते हैं और ऊपर से ये सब ढक देते हैं, जैसे जमीन जैसे दिखते हैं। और जो ट्रेंड ऐसी हाथीनी होती है तो उसको उस पार खड़ा करते हैं, और जिसको पकड़ना है हाथी वो दौड़ के आता है, जंगल में होती है बात, तो सीधा चलना चाहता है उसकी तरफ वो, क्योंकि बीच गड्ढा है वो मालूम नहीं है, क्यों ऐसा विषय आ सकता है उसके प्रति राग के कारण उसकी तरफ दौड़ता है, उसमें गड्ढे में गिर जाता है। तो यही उसी के उपमा देके बताएं। जिसकी काम सेवन में अति आसक्ति होती है उसका धन धर्म और शरीर नष्ट हो जाते हैं। जो धर्म और काम की परवाह न करके केवल धन कमाने में ही लगा रहता है उसके धन को दूसरे भोगते और स्वयं पाप का भाजन बनता है। संस्कृत में एक श्लोक है, सबसे बड़ा दानी कौन है? कृपण। कृपण सबसे बड़ा दानी है, क्यों? वो एक पैसा भी अपने के लिए खर्चा नहीं करेगा, धन कमाने के पीछे चलेगा, और पूरा का पूरा मर जाएगा तो पूरा ही धन दूसरे को छोड़ के चला जाएगा, वो भोगेगा भी नहीं है। कंजूस कंजूस। इसी तरह धन और काम भोग की परवाह न करके केवल धर्म सेवन करना तो मुनियों का ही धर्म है, गृहस्थों का नहीं। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर, आगे की बात कल पड़ेगी। 15 पृष्ठ पर आए हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।